प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 3 जुलाई 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में आइए हम सब मिलकर स्वर्ग की तलाश करें और अपने स्वर्ग की तलाश करें। और अगर मैं ये अनुमान लगा रहा हूं तो कोई गलत नहीं कर रहा हूं कि मैंने इस विषय का चुनाव क्यों किया है। आप सब इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो गए होंगे। दिल्ली में जो एक घटना घटी है, दिल को दहला देने वाली घटना, दिमाग को निचोड़ कर रख देने वाली घटना कि एक साथ एक परिवार के 11 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्याएं कर ली। और क्यों? क्योंकि उन्हें ईश्वर से मिलने जाना है, स्वर्ग पहुंचना है, या यूं कह लिए मोक्ष को प्राप्त करना है। इसे आप जो भी नाम देना चाहें। फिलहाल बात केवल इतनी सी है कि अभी की जो मेरी जिंदगी है वह उतनी बेहतर नहीं है। दूसरी जो जिंदगी है या दूसरी जो जगह है, जो बताई जा रही है, जो कही जा रही है, जो मेरे दिमाग में डाली जा रही है, जिनके बारे में मैं कल्पना कर रहा हूं, या तो मैं आप पहले से ही कर रहा था या कल्पना कराई गई है, वह जो दुनिया है, वह दुनिया इतनी सुनहरी दुनिया है, इतनी बेहतर दुनिया है कि वहां केवल सुख ही सुख है। तो फिर इस दुख भरी दुनिया को छोड़कर क्यों न उस सुख भरी दुनिया में चला जाए। और अगर यह सच है तो मुझे लगता है कि जो घटना घटित हुई है वह भी कोई गलत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह सच है? सबसे बड़ी बात यह है, घटना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस वजह से यह घटना घटी है और दिल को दहला देने वाली बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है, क्या उसके पीछे जो कारण है वो कारण सही है? क्योंकि घटनाएं तो घटती रहेंगी, तब तक घटती रहेंगी जब तक हम कारणों को करेक्ट नहीं करेंगे। कोई भी घटना बिना कारण के तो घटित होती नहीं है। तो इसका कारण क्या था? इस घटना के घटने का कारण क्या था? उसे आप चाहे ईश्वर कह लीजिए, चाहे आप अध्यात्म कह लीजिए, चाहे आप मोक्ष कह लीजिए, चाहे आप स्वर्ग कह लीजिए। यहां मैंने उसे स्वर्ग कहा है, हेवन, कि स्वर्ग में जाना है। दोस्तों दो चीजें आप सोच कर देखिए, यहां दो चीजें बहुत सोचने की बात है। आप अगर आप इस घटना को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि इस घटना को बहुत ध्यानपूर्वक आप सबको पढ़ना भी चाहिए। एक तो उसका बड़ा मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला पार्ट है जिसमें हमारा मन दुख तकलीफ इमोशंस से भर उठता है, मन चित्कार कर उठता है कि एक साथ पूरे ऐसे परिवार का सफाया हो जाना जो इतना अच्छा परिवार था, जिसका व्यवहार इतना अच्छा था, जो लोग इतने धर्म भीरु थे। आप कह लीजिए धर्म प्रिय होना अलग बात है, और शायद वो धर्म भीरु ज्यादा थे, इसीलिए उन्होंने ये भीरुतापूर्ण कदम उठाया है। एक तो उनके प्रति हमारी सांत्वना जुड़ती है, हमारा यूं कह लीजिए कि सद्भावना जुड़ती है। अफसोस होता है उनके बारे में सोच करके कि इतना खेलता खाता हंसता गाता परिवार और इस तरीके से धरती से चला गया। दूसरा इसका जो पक्ष है वो ये है कि ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अगर वो एक परिवार के साथ हो सकता है तो दूसरे परिवार के साथ भी हो सकता है, और अगर दूसरे परिवार के साथ भी हो सकता है तो किसी भी परिवार के साथ हो सकता है, और हो सकता है कि वो परिवार मेरे खुद का परिवार हो। क्योंकि हम अपने को समाज से बहुत अलग करके तो नहीं देख सकते, इसे ही हम संक्रामक रोग कहते हैं। तो हमें समझना चाहिए उन कारणों को कि इस तरह की घटनाएं घटित क्यों होती हैं। और सामूहिक रूप से मित्रों सच पूछे तो ये दिमाग को भी बिल्कुल निचोड़ कर रख देने वाली घटना है। ये केवल दिल को ही नहीं निचोड़ रही है, दिमाग को भी निचोड़ रही है कि आदमी के मस्तिष्क को आप सोच कर देखिए कि किस सीमा तक प्रभावित किया जा सकता है, जिसे आप ब्रेन वॉशिंग कह सकते हैं। उसके दिमाग में अभी जो चीजें हैं उनको आप पूरी तरह से खारिज कर दे रहे हैं, उनको पूरी तरह से निकाल करके बाहर कर दे रहे हैं, उसमें बिल्कुल एक नई चीज डाल दे रहे हैं। जैसे कि किसी कंप्यूटर से आपने एक फ्लॉपी या पेन ड्राइव निकाल दी, दूसरा पेन ड्राइव डाल दिया, दूसरी फ्लॉपी डाल दी, तो अब दूसरा प्रोग्राम हो गया, दूसरी प्रोग्रामिंग ही हो गई उसकी कंप्यूटर की। आदमी के साथ भी ऐसा किया जा सकता है, ये इसको प्रमाणित कर रहा है। आप देखिए कि जब आप इसको वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि पहला तो उसका इमोशनल पक्ष है और दूसरा उसका वैज्ञानिक पक्ष है। तो ये जो परिवार है ये पढ़ा लिखा परिवार है। पढ़े लिखे परिवार से हम एक उम्मीद करते हैं कि उसके पास रीजनिंग होगी, उसके पास थॉट्स होंगे। जब उसे कोई भी बात बताई जाएगी जो उसके थॉट्स से मेल नहीं खा रही है, तो डेफिनेटली वो अपने लॉजिक का इस्तेमाल करेगा, वो उस पर सोचेगा, विचारेगा, तर्क वितर्क करेगा, बहस करेगा, और तब कहीं जाकर या तो उसे रिजेक्ट करेगा या उसे रियलाइज करेगा या थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ उसे स्वीकार करेगा, जो भी वो करे। लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करने के बाद, हमें नहीं मालूम कि इसमें दिमाग का कितना इस्तेमाल किया गया, हमें तो केवल परिणाम मालूम है जो बेहद हृदय विदारक है। तो दोस्तों, ये जो स्वर्ग की जो आदमी खोज करता है, अब मैं अपने मुख्य विषय पर आ रहा हूं, वो क्यों करता है और वो है कहां? क्या सच में वो कहीं है? चंद्रमा पर हम पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह पर भी यान उतर गए हैं और ग्रहों की खोज हो रही है, क्या इसी तरह से स्वर्ग नाम का भी कोई ग्रह है? और वो जो स्वर्ग का, जो स्वर्ग नाम का अगर कोई ग्रह है, कोई जगह है जिसे हमारे शास्त्रों में लोक कहा गया, यानी कि एक दुनिया है, हम मृत्यु लोक में हैं, वो स्वर्ग लोक है, एक नर्क लोक है, तो क्या उस स्वर्ग लोक का जो स्वरूप है वो सबके लिए एक है या सबके लिए अलग अलग है? जैसे अगर चंद्रमा पर आप होकर के आए हैं, चाहे रूस होकर के आया हो, अमेरिका होकर के आया हो और भारत होकर के आया हो, जब वहां से लौटेंगे तो वो बताएंगे कि भाई चंद्रमा में ये चीजें हैं, और जब आप उनके बताए हुए तीनों के मिलाएंगे तो लगेगा कि ये सब तो एक ही बात कह रहे हैं, इसका मतलब है कि बात सही है। स्वर्ग के बारे में आप क्या समझते हैं? अगर स्वर्ग सच में है तो उसके बारे में जो बातें बताई जा रही हैं या जो लोग भी वहां होकर के आए हैं या वहां से संदेश दे रहे हैं, फिर ये होना चाहिए कि वो जो कुछ भी बता रहे हैं वो मैच करे। लेकिन इसमें सबसे रोचक बात ये है मित्रों, जो सोचने के लिए हमें मजबूर करती है और हमें सोचना भी चाहिए। देखिए, आप सोचिए और सोचने के बाद, सोचने विचारने के बाद अगर आपको सही लगता है तो फिर आप उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सोच विचार कर स्वीकार करते हैं तो याद रखिए कि वो विज्ञान बन जाता है। ज्ञान का यही उपयोग ही है कि वो सोच विचार करके उसको फिनिश्ड फॉर्म में, ज्ञान को विज्ञान में तब्दील करते। जब आपका ज्ञान प्रूफ हो जाता है तो विज्ञान बन जाता है। ज्ञान का मतलब किताबों के लिखे हुए अक्षरों को दिमाग में रख करके रट लेना नहीं है और जरूरत पड़ने पर उगल देना नहीं है। ज्ञान का मतलब ही है कि जैसे कि एक मैकेनिक के हाथ में रिंच, प्लास, पेचकस आ जाता है, जिसके आधार पर, जिसका इस्तेमाल करके वो बिगड़ी हुई गाड़ियों को ठीक करता है, ठीक उसी तरह से ये जो ज्ञान है हमारे हाथ में, मैकेनिक के हाथ में आए हुए पेचकस, प्लास, रिंच, हथौड़ा, यही सब कुछ है कि जब कोई गड़बड़ी हो जाती है तो इनके माध्यम से हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इन स्वर्ग के बारे में जो कल्पनाएं की गई हैं उनको आप अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर पढ़ने को मिलेंगे। और केवल इंटरेस्टिंग फैक्टर ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में खड़े हुए फैक्टर। अरे तो फिर सच क्या है, ये विरोध क्यों है? जैसे आप तिब्बत के ग्रंथ उठा करके देखिए, तिब्बत के ग्रंथ, तो पता लगेगा कि वहां के स्वर्ग में, जो तिब्बत के लोगों ने स्वर्ग की जो परिकल्पना की है, वहां के स्वर्ग में जगह जगह पर आग जल रही है, राइट? और भारत में कहां आग जल रही है? नरक में आग जल रही है। आपने सुने होंगे आग जल रही है और वहां बड़े बड़े कड़ाहे रखे हुए हैं और उन कड़ाहों में पापियों को तला जा रहा है, भूना जा रहा है। हमारे लिए जो नरक है, जहां हमारे नरक में आग जल रही है, वो तिब्बत वालों के लिए स्वर्ग में हो रहा है। सवाल यह है कि अगर मैं भारत को छोड़कर तिब्बत चला जाऊं या तिब्बत के लोग भारत में आ जाएं तो क्या उनका स्वर्ग बदल जाएगा? क्या होगा, कैसे होगा? अब सवाल यह है मित्रों कि ऐसा हुआ क्यों? चलिए, हम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत ने गलत सोचा या तिब्बत ने गलत सोचा या अमेरिका और कुछ सोच रहा है, क्योंकि स्वर्ग की परिकल्पना तो सभी धर्म ने की है, अपने अपने ढंग से की, अपने अपने नाम दिए हैं। मैं उन सब के बारे में बताने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैंने दो उदाहरण अभी आपके पास तिब्बत और भारत के दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें से कौन सही परिकल्पना कर रहा है, कौन गलत परिकल्पना कर रहा है। मेरा बात कहना केवल यह है कि इसके केंद्र में क्या है, इसके मूल में क्या है। इसके मूल में बहुत सिंपल सी चीज है। सिंपल सी चीज यह है कि जो जिन चीजों की आपको जरूरत है, आकांक्षा है, उस आकांक्षा की पूर्ति आप किसी दूसरे लोक में कर रहे हैं। बेचारे तिब्बती जो इतने ठंड से परेशान रहते हैं, उनके लिए आग का के ताप का एहसास ही स्वर्ग है, उन्होंने स्वर्ग बना दिया। उष्णकटिबंध में जो हम भारत के लोग रह रहे हैं, हम भारतीयों के लिए वसंत बयार सबसे अच्छी है। कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं मौसम ऋतुओं में मैं वसंत हूं। वसंत बयार, हमने वसंत बयार पर गीत लिखे हैं, हम उसे एंजॉय करते हैं, तो हमारे स्वर्ग में वसंत बह रही है। और अगर हम उष्ण कटिबंध में रह रहे हैं तो कितनी गर्मी, गर्मी से तो हम खुद ही परेशान हैं, तो हम परेशानी को हमने नरक में डाल दिया और वसंत बयार को हमने स्वर्ग में डाल दिया। यानी कि जो चीज हमें यहां नहीं मिल रही है लेकिन हमें चाहिए, जिससे हमें लगता है कि हमें सुख मिल सकता है, उन सारी चीजों को इकट्ठा करके हमने स्वर्ग की रचना कर ली। और जो हमारे दुखों को बढ़ा सकता है उनको इकट्ठा करके हमने नरक की रचना कर ली। मित्रों, इस विषय पर मैं थोड़ी सी और आप सबसे बातें करना चाहूंगा। आप सबके प्रश्न भी आमंत्रित हैं, क्योंकि इस विषय ने बिल्कुल अंदर से मुझे व्यक्तिगत तौर पर, आप सबको के साथ भी ऐसा होगा, बहुत दहला करके रख दिया है। तो डेफिनेटली इस पर हम लोग थोड़ी सी और बातें करेंगे, और अगर आप लोग इस बहस में हिस्सा लेंगे तो हम लोगों की ये जो बात है और अधिक अनुकूल हो सकेगी, मजबूत हो सकेगी और साथ ही साथ अधिक उपयोगी भी हो सकेगी। तो दोस्तों, चूंकि वक्त हो चुका है इसीलिए अब इजाजत मांगना मेरी मजबूरी है, मुझे इजाजत दें। नमस्कार।